लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। दुष्ट भाग जाता यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह शावक की तरह आश्वस्त रहता है। विद्रोही देश में बहुत से शासक होते हैं। समझदार और अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था दीर्घ काल तक सुदृढ़ रहती है। दरिद्रों का शोषण करने वाला शासक फसल नष्ट करने वाली मूसलाधार वर्षा जैसा है। संहिता का परित्याग करने वाले दुष्टों की प्रशंसा करते हैं, जबकि संहिता का पालन करने वाले उनका विरोध करते हैं। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के प्रथम चार पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः श्रोताओं, 28वें अध्याय में राजा सुलेमान के कथनों की एक लंबी सूची जारी की गई है, जिनमें कई प्रत्यक्ष विरोधाभास शामिल हैं। इनमें शासकों और नेताओं के कई संदर्भ मिलते हैं। यह अध्याय धार्मिकता, न्याय, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के बारे में निर्देशों से शुरू होता है। दोषी अंतर आत्मा दोषी कार्यों की ओर ले जाती है, जबकि स्पष्ट विवेक आत्मविश्वास की ओर, क्योंकि नैतिक अखंडता भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। सुलेमान यह भी चेतावनी देता है कि जो लोग जानबूझकर नियमित रूप से ईश्वर की उपेक्षा करते हैं, वे वास्तव में प्रार्थना करने का प्रयास करते समय उन्हें क्रोधित करते हैं, मानो ईश्वर उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाध्य हों। श्रोताओं को हमने यह भी बताया था कि इस अध्याय के दूसरे भाग में अधर्मी शासकों के प्रभाव और अराजक नेतृत्व एवं सांस्कृतिक पाप के बीच पारस्परिक संबंध का उल्लेख मिलता है। दुष्ट सरकारें भय और विच्छिन्नता को प्रेरित करती हैं, किंतु जब दुष्ट शासकों को नष्ट कर दिया जाता है तो राष्ट्र जश्न मनाता है और भलाई की वृद्धि होती है। इस अध्याय के अन्य नीति वचन लालच के खतरों के बारे में हैं। एक बार फिर लेखक भौतिक धन का पीछा न करने का परामर्श देता है, क्योंकि आम तौर पर यह भयानक परिणामों की ओर ले जाता है। अस्तु श्रोताओ, 28वें अध्याय के उक्त पदों में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि दुष्ट तरीकों से चलने वाले लोगों को लगातार भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी खुद के दोष और पाप के प्रति जागी चेतना उन्हें आतंकित करने लगती है। इसीलिए जब कोई उनका पीछा भी नहीं करता है, तब भी वे भागने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वे सहज होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें गुप्त रूप से भय बना रहता है। वे जहां भी जाते हैं, उन्हें उनका पाप काटता है। फिर दुष्ट भाग जाता यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह शावक की तरह आश्वस्त रहता है। इस पद का यही अर्थ है कि जिन्होंने ईश्वर को अपना शत्रु बना लिया है, जो ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपने दुख दर्दों के लिए ईश्वर को ही दोषी मानते हैं, वे मानो पूरी सृष्टि को अपने साथ युद्ध करते हुए देखते हैं। सारी दुनिया उनके लिए दोषी हो जाती है। ऐसे लोग कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं होता, कोई साहस नहीं होता, बल्कि न्याय की भयभीत प्रतीक्षा रहा करती है। श्रोताओ, पाप और दुष्टता मनुष्य को कायर बना देते हैं, इसलिए कि पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से विद्रोह का साहस कर बैठता है। वह सर्वशक्तिमान का सामना करने का दुस्साहस करता है, जबकि ईश्वर पर भरोसा, विश्वास और श्रद्धा सुख, शांति और आनंद का स्रोत है। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के 5 से लेकर 9 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: दुष्ट नहीं समझते कि न्याय क्या है, प्रभु की खोज में लगे रहने वाले उसे अच्छी तरह से समझते हैं, कपटी धनी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा होता है, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है, जो ब्याज और सूद खोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है, जो संहिता पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। श्रोताओ, ऐसे भी लोग होते हैं जो मूल रूप से बुरे या दुष्ट होते हैं, वे न्याय को अथवा न्याय के सिद्धांतों को नहीं समझते या नहीं मानते, न्याय के सिद्धांतों को खुद पर लागू नहीं करना चाहते। एक प्रकार से उनके दिमाग स्वाभाविक रूप से अंधे हैं, वे अपने पूर्वाग्रहों और अपने जुनूनों में ही सिमट कर रह जाते हैं तथा न्याय की परवाह नहीं करते। इनके विपरीत वे लोग होते हैं जो अनवरत ईश्वर की तलाश में लगे रहते हैं, अर्थात भलाई की तलाश में, न्याय की तलाश में। ऐसे लोग विनम्र होते हैं, जिनके लिए बहुत सी अस्पष्ट चीजें सरल हो जाती हैं। फिर लेखक कहता है कि कपटी धनी व्यक्ति की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अधिक अच्छा है। श्रोताओ, गरीबी से भी बदतर चीजें हैं, जैसे एक दुष्ट पुरुष या महिला का होना जो ईमानदार नहीं। यह सूक्ति एक गरीब और सदाचारी व्यक्ति की ईमानदारी तथा भ्रष्ट अमीर व्यक्ति के बीच अंतर बताता है। श्रोताओ, व्यक्ति का चरित्र उसके आचरण से परखा जाता है, न कि उसके धन से। व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, यदि वह अपने धन पर घमंड करता है, यदि वह अपने से गरीब व्यक्ति को नीचा मानता है, यदि वह उस पर अत्याचार करता है सिर्फ इसलिए कि उसके पास धन दौलत है, तो उसकी धन संपदा कोई काम की नहीं, मन से वह गिरा हुआ ही रहेगा। 28वें अध्याय के 7वें पद में लेखक कहता है, संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। श्रोताओ, आज्ञाकारिता बुद्धिमता का प्रमाण है। जो लोग विवेकशील या बुद्धिमान होने का दावा करते हैं लेकिन फिर भी मूल रूप से अवज्ञा की स्थिति में रहते हैं, वे अपनी मूर्खता दिखाते हैं। दावत उड़ाने वाले पेटुओं की संगति पिता को और संपूर्ण परिवार को शर्मिंदा करती है, इसलिए लेखक का परामर्श है कि ऐसे लोगों की संगति न की जाए। वस्तुतः खान पान में अपना सब कुछ उड़ाने वाले बेवकूफ होते हैं, वे जीवन, भोजन और प्राप्त शिक्षा का अपमान करते हैं और इस कारण अपने परिवार को लज्जित करते हैं। श्रोताओ, जो कुछ हम हैं, जो हमें मिला है, उसका हम सदुपयोग करें, मूर्खों के सदृश व्यवहार न करें, अपनी मान मर्यादा को कदापि न खोएं, यही इस नीति वचन का संदेश है। आगे लेखक कहता है, जो ब्याज और सूद खोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है, जो संहिता पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित होती है। श्रोताओ, पहली दृष्टि में आठवां पद हमें विरोधाभासी लग सकता है, किंतु इसमें इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि कुछ लोग आर्थिक हिंसा के माध्यम से अमीर बनते हैं। वे उच्च और अनुचित ब्याज यानी कि सूदखोरी से धन बटोरते हैं या अपनी शक्ति का उपयोग धोखाधड़ी, चोरी और जबरन वसूली के लिए करते हैं। सूदखोर गरीब कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर दया का दिखावा करता है। यह दर्शाता है कि वह उसकी मदद करता है, किंतु अपने धन का चौगुना या उससे भी अधिक वापस लेकर वह उसे लूटता है, उसके साथ छल करता है। भले ही अर्थशास्त्र की दृष्टि से ब्याज लेना उचित है, किंतु गरीब की जरूरतों का लाभ उठाकर खुद को धनाढ्य बना लेना सर्वथा अनुचित है। ऐसे सूदखोर संहिता पर कान नहीं लगाते। इनके लिए सूक्ति ग्रंथ के लेखक का कहना है कि उनकी प्रार्थना भी घृणित होती है। उनकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं होती, बल्कि एक दिखावा मात्र होता है। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को सुनने या सम्मान देने के लिए बाध्य नहीं जो ईश वचन की उपेक्षा करते हैं। प्रार्थना करने के लिए आवश्यक है विनम्र हृदय से ईश वचन को सुनना और उसे अपने जीवन पर अमल करना, अन्यथा हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को सुग्राह्य कदापि नहीं होंगी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व मिशन दिवस के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस मिशनरियों को याद दिलाते हैं कि प्रार्थना में प्रभु की ओर मुड़ना आशा की चिंगारी को जीवित रखने की कुंजी है, ताकि यह एक महान आग बन सके जो हमारे चारों ओर सभी को प्रबुद्ध और गर्म कर सके। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि प्रार्थना न केवल मिशनरी कार्यों की कुंजी है, बल्कि अपने अंदर ईश्वर द्वारा जलाए गए आशा की चिंगारी को भी जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संत पापा ने 2025 के लिए अपने विश्व मिशन दिवस संदेश में यह संवेदनात्मक अनुस्मारक दिया, जिसे वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा गुरुवार को कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। पोप ने अपने संदेश की शुरुआत यह याद दिलाते हुए कि इस वर्ष के विश्व मिशन दिवस का मूल आशा है, और बतलाया कि इसी कारण से उन्होंने इसका आदर्श वाक्य चुना है, सभी लोगों के बीच आशा के मिशनरी। उन्होंने कहा, यह हर एक विश्वासी और पूरी कलीसिया को मसीह के पदचिन्हों पर चलते हुए आशा के संदेश वाहक और निर्माता बनने के लिए हमारे मौलिक आह्वान की याद दिलाता है। संत पापा ने ख्रिस्त मिशनरी के तीन पहचान बतलाए। पहला, प्रभु के पदचिन्हों पर चलना। उन्होंने कहा, हम सभी प्रभु येसु के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित महसूस करें, ताकि उनके साथ और उनके द्वारा सभी के लिए आशा के चिन्ह और संदेश वाहक बन सकें। दूसरी पहचान है कि ख्रिस्त सभी लोगों के बीच आशा के वाहक और निर्माता हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु का अनुसरण करते हुए ख्रिस्तों को लोगों की ठोस परिस्थितियों में सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने कहा, प्रभु के आह्वान का अनुसरण करते हुए आप ख्रिस्त में ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए दूसरे देशों में गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका जीवन पुनर्जीवित ख्रिस्त के आदेश का स्पष्ट प्रत्युत्तर है, जिन्होंने अपने शिष्यों को सभी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा था। इस तरह पोप ने बतलाया कि वे बपतिस्मा प्राप्त लोगों के सार्वभौमिक आह्वान के संकेत हैं, जो आत्मा की शक्ति और दैनिक प्रयास से सभी लोगों के बीच मिशनरी और प्रभु येसु द्वारा हमें दी गई महान आशा के साक्षी बनते हैं। संत पापा ने गौर किया कि तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित देशों में सामिप्य लुप्त होते जा रहा है। उन्होंने कहा, हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं, लेकिन संबंध नहीं है। कार्यकुशलता के प्रति जुनून और भौतिक चीजों एवं महत्वाकांक्षाओं के प्रति लगाव हमें आत्म केंद्रित और परोपकार के अयोग्य बना रहा है। संत पाप ने आश्वस्त किया कि समुदाय के जीवन में अनुभव किया गया सुसमाचार हमें एक संपूर्ण स्वस्थ और मुक्त मानवता में पुनर्स्थापित करेगा। विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह में जॉर्डन के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री तथा यीशु के बपतिस्मा स्थल के निदेशक देश की तीर्थ यात्राओं के महत्व का वर्णन करते हैं। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के तुरंत बाद पौत्र भूमि के संरक्षक और यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्म अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक बार फिर पौत्र भूमि की तीर्थयात्रा करने की अपील की है। लातिनी प्राधिधर्म अध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तिस्ता पित्साबाला ने तीर्थयात्रा को पूरी तरह सुरक्षित बतलाया है और फ्रांसिस्कन फादर पैटन ने लोगों को तीर्थयात्री के रूप में यरूशलेम जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने पौत्र भूमि के छोटे क्रिस्त समुदाय के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की है। जॉर्डन की पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री लीना ने पौत्र भूमि पर लौटने के इस निमंत्रण को दोहराया। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने इन तीर्थयात्राओं के महत्व पर जोर दिया क्योंकि जॉर्डन वह स्थान है जहां ख्रिस्तों की उपस्थिति शुरू हुई, जहां ख्रिस्त रहते हैं। 2024 में इस क्षेत्र में विभिन्न घटनाओं के परिणाम स्वरूप देश में आने वाले आगंतुकों की संख्या में लगभग 4% की गिरावट आई। लीना ने इसे चिंताजनक बताया क्योंकि ख्रिस्त उपस्थिति चाहे ऐतिहासिक, वर्तमान या भविष्य की उपस्थिति हो, हम कौन हैं अपनी पहचान का एक अभिन्न अंग है। दुनिया की लगभग 30% आबादी ईसाई है, इसलिए जॉर्डन के साथ ऐतिहासिक संबंधों का दूरगामी प्रभाव है। आशा के जयंती वर्ष और युद्ध विराम समझौते के शुरू होने के साथ लीना ने उम्मीद जताई है कि जॉर्डन की यात्राएं खुलेंगी और ज्यादा लोग देश का दौरा करेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जॉर्डन और वहां के विभिन्न पौत्र स्थलों का दौरा करना एक प्रभावशाली अनुभव हो सकता है, जहां लोग आकर आध्यात्मिकता, शांत और शांति की भावना को देख और अनुभव कर सकते हैं। 1-7 फरवरी को विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको सबसे पहले जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने आयोजित किया था। निदेशक मखजियान ने बतलाया कि बपतिस्मा स्थान इस संवाद के लिए एक स्थान है जहां यहूदी, ख्रिस्ते और मुस्लिम एक स्थान पर आते हैं और वे तीनों एक साथ पुकारते हैं। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के उन युवा पुरोहितों एवं अट्ठवासियों से मुलाकात की जो अध्ययन यात्रा पर रोम आए हैं। आर्मेनियाई, कोप्टिक, इथोपियाई, एरिट्रियाई, मलंकारा और सीरियाई पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के युवा पुरोहित एवं मठवासियों को एक साथ देखकर संत पापा ने खुशी व्यक्त की। यह 5वीं अध्ययन यात्रा है जिसका आयोजन ख्रिस्ते एकता को बढ़ावा देने के लिए गठित परमधम पीठ विभाग की ओर से किया गया है। संत पापा ने कहा, मैं कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्रीय वार्ता आयोग द्वारा प्रोत्साहित इस उपहारों के आदान प्रदान के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि यह प्रेम के संवाद को सत्य के संवाद के साथ साथ चलने में सक्षम बनाता है। बुधवार को संत पापा ने अपने आम दर्शन समारोह का समापन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए की जो युद्ध के कारण पीड़ित हैं, तथा उन पुरोहितों एवं धर्म समाजों की भी याद की जो युद्ध से त्रस्त देशों में पीड़ितों और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। भले ही सर्दी के कारण बुधवार की सुबह संत पापा आम दर्शन समारोह के दौरान अपनी धर्म शिक्षा नहीं पढ़ पाए, लेकिन वे इसके समापन पर शांति और प्रार्थना के लिए अपनी अपील दोहराए। दुनिया में व्याप्त युद्धों को एक बार फिर याद करते हुए पोप ने कहा कि वे यूक्रेन, इसराइल और फिलिस्तीन सहित युद्ध से पीड़ित राष्ट्रों के बारे में सोचते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।